आर्यांश ने दीवा को गुंडों के बीच छोड़ दिया था। दीवा ने उन गुंडों से बचने के लिए सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। वो बच गई थी, लेकिन अब आर्यांश को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने दीवा को इतना डरा दिया था कि उसकी वजह से उसने खुद की जान तक देने की कोशिश की थी। जब दीवा ऑपरेशन थिएटर में थी, तब बाहर आर्यांश की हालत बहुत खराब हो गई थी। दीवा की होश आने के बाद आर्यांश उससे मिलने गया तो पहले दीवा उसका सामना तक नहीं करना चाहती थी। आर्यांश ने उससे बात करने की जबरदस्ती की तो फिर से उनकी बातचीत एक बहस में बदल गई थी। आर्यांश अब दीवा को तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करने की बात कह दी थी। दीवा को मन ही मन तसल्ली हुई कि चलो उसका तकलीफ सहना कुछ तो काम आया। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आर्यांश अचानक उसके करीब आया और उसे काफी अग्रेसिवली किस करने लगा। दीवा ने तुरंत उसे खुद से दूर किया और गुस्से में बोली, पागल हो गए हो तुम? मैं बीमार हूँ और ऐसे हालात में भी तुम्हें ये सब सूझ रहा है? तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दोगे। हाँ, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें मुझे हर तरीके से सेटिस्फाई करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा हुआ था। वैसे भी अगले कुछ दिनों तक तुम हॉस्पिटल में ही हो, तो क्या मैं वेट करूं कब तुम डिस्चार्ज हो? आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। दीवा को यही लगता था कि आर्यांश बस अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए उसके करीब आना चाहता है, जबकि सच तो ये था कि उसके पास आने पर वो उसकी सारी तकलीफों को भूल जाता था। मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना है, क्या तुम मुझे इंसान भी नहीं समझते हो? दीवा ने गुस्से में जवाब दिया। उसे हैरानी होती थी। कभी कभी आर्यांश ऐसे रिएक्ट करता था जैसे वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा, तो कई बार बिल्कुल बेरहम हो जाता था। मैंने कब कहा तुम इंसान नहीं हो? तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो, फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं चला? दीवा को यंका, लगता है तुम्हें बेड मैनर्स भी मुझे सिखाने पड़ेंगे, आर्यांश ने हल्का मुस्कुराकर कहा। वो दीवा को जानबूझकर तंग कर रहा था। आर्यांश दीवा के करीब आने लगा, तभी दीवा ने अपने पैर पूरे बेड पर फैलाते हुए कहा, तुम्हें देख नहीं रहा, यह हॉस्पिटल है। तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ पाएगा? अगर आर्यांश ककुर कुछ पाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, आर्यांश ने इविल स्माइल करते हुए कहा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं पेशेंट हूँ, दीवा ने हड़बड़ाकर कहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं सच में आर्यांश अपनी जिद पर आ गया तो वो हॉस्पिटल बेड पर ही शुरू हो जाएगा। आर्यांश ने दीवा की कलाई पकड़ी जिस पर चोट लगी हुई थी और फिर उसे हवा में हिलाते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे पूछकर थोड़े ना किया था। अब खुद देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात का प्रॉमिस नहीं निभाने वाला। दीवा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। एक बात तो वो अच्छे से जान गई थी, वो आर्यांश को जितना मना करेगी वो उतना ही जिद करेगा। दीवा बिना कुछ बोले बैठकर एक तरफ खिसक गई थी तो आर्यांश ने हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास आकर लेट गया। आर्यांश ने दीवा के होठों पर हल्का सा किस किया, उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब चुपचाप सो जाओ। आर्यांश दीवा को तंग करने के लिए जानबूझकर परेशान कर रहा था, जबकि उसका दीवा के साथ आज रात कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, खासकर जब वो ऐसी हालत में थी। वो तो बस दीवा को खोने के डर से घबरा गया था। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था जिसकी रोशनी किसी तरह अंदर आ रही थी और उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। आर्यांश की बाहों में दीवा को भी सुकून महसूस हो रहा था और थोड़ी ही देर में उन दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह दीवा की आंख खुली तो उसने देखा आर्यांश पहले ही उठकर तैयार हो चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। आर्यांश अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे ये तक एहसास नहीं था कि दीवा नींद से जाग उठी है। ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द था। दीवा उसे दर्द को जानना चाहती थी, पर कभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्यांश से डायरेक्ट पूछ सके। वो अपने चेहरे पर कुछ खास जाहिर नहीं करता था। हाँ, कुछ मौके ऐसे होते थे जब उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में उतर आता था, जैसे कल रात हुआ था। दीवा को खो देने का ख्याल फिर से तकलीफ पहुंचाने के लिए काफी था। अचानक आर्यांश उसकी तरफ पलटा और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। दीवा ने भी जवाब में हल्की मुस्कुराहट के साथ धीरे से मॉर्निंग विश किया। आर्यांश की आंखों में नजर आ रहा था कि वो कितना बेचैन है। उसके साथ रहते हुए दीवा को इतना तो एहसास हो गया था कि उसका अचानक इस तरह प्यार जताना और फिर अगले ही पल गुस्से में रूठ जाना यूं ही नहीं था। उसकी भी एक कहानी थी जिसके बारे में दीवा जानना चाहती थी, उसे तसल्ली देना चाहती थी। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए शांत लहजे में बोला, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, मैंने तुम्हारी छुट्टियों का अरेंजमेंट कर दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती, दीवा ने जवाब दिया। इतनी मुश्किल से दीवा को छुट्टी लेने का मौका मिलता था तो वो उसे हॉस्पिटल जैसी जगह पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसका पूरा दिन वहीं पर तो बीतता था। अच्छा तो बताओ, तुम्हें कहाँ रहना है और क्या करना है? आर्यांश ने काफी नरमी से पूछा। वो कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहा था जिससे दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने पलकें झुकाकर मासूमियत से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। आर्यांश तैयार था तो दीवा को भी यही लगा कि वो ऑफिस जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर घर चलते हैं। तुमने एक दिन मुझे कहा था कि तुम्हें मूवी देखना है, तो क्यों ना आज हम मूवी देखने चलें? आर्यांश ने पूछा। क्या सच में? दीवा ने हैरानी से पूछा। आर्यांश के लिए ऑफिस जाना बहुत जरूरी होता था और वो उसे मूवी का पूछ रहा था, तो वो चौंक गई। हाँ सच में, चलो फ्रेश हो जाओ, आर्यांश बोला और फिर दीवा के पास आकर उसका ब्लैंकेट हटाया और उसकी उठने में हेल्प की। थैंक यू, दीवा ने मुस्कुराकर कहा और फिर बाथरूम में चली गई। इस आर्यांश का ये नया सॉफ्ट साइड बहुत पसंद आ रहा था और वो मुस्कुराते हुए अंदर टूथब्रश कर रही थी। वहीं उसके अंदर जाते ही आर्यांश ने बेबसी से सिर हिलाया और फिर सोफे पर बैठ गया था। उन्हें इतने दिन साथ रहते हुए हो गए थे, लेकिन आर्यांश ने कभी एक पूरा दिन उसके साथ नहीं बिताया था। उसने कभी दीवा का दिल जीतने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब लग रहा था कि उसे ऐसा करना होगा। आर्यांश दीवा के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक दीवा ने बाथरूम से अपना सिर बाहर निकाला और बोली, अरे यहाँ तो मेरे कपड़े ही नहीं है। आर्यांश उठा और उसने दीवा के हाथ में एक बैग पकड़ा दिया था। दीवा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वापस अपना मुंह अंदर की तरफ कर लिया था। उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का शिफॉन का खूबसूरत ड्रेस था, जिसे देखकर दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब से दीवा आर्यांश के साथ रहने लगी थी, आर्यांश उसकी हर छोटी चीज का ध्यान रखता था। उसके लिए कपड़े भी वही मंगवाता था जो ब्रांड के होने के साथ साथ लिमिटेड एडिशन के होते थे। तैयार होने के बाद दीवा कमरे से बाहर आई। आर्यांश ने एक नजर उसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि वो दीवा से भी खूबसूरत लड़कियों से नहीं मिला था, लेकिन उसकी आंखों में एक कशिश थी और चेहरे पर प्यारी सी मासूमियत जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। आर्यांश को अपनी तरह इस तरह देखता पाकर दीवा ने अपने बालों को कान के पीछे किया और पूछा, हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? तुम जो कहोगी वही देख लेंगे, आर्यांश ने जवाब दिया। उसने अपनी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं बताई। ठीक है, तो फिर मैं गूगल पर सर्च करके देखती हूँ, दीवा बोली और फिर अपनी आदत के मुताबिक अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वहाँ उसका फोन नहीं था। तभी दीवा को याद आया कि उसका मोबाइल उसके साथ नहीं था।
दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा और हल्का हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? दीवा को पूछते हुए अजीब लग रहा था, क्योंकि मोबाइल एक पर्सनल चीज होती है। आर्यांश ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकालकर दीवा को देते हुए कहा, पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों का पासवर्ड सेट करके रखते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। तो क्या आर्यांश उससे प्यार करता था? दीवा ने उत्सुकता से आर्यांश की तरफ देखकर पूछा, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ को तुमने अपना पासवर्ड क्यों बना रखा है? मुझे नहीं लगता कि अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बनाना गलत बात है, आर्यांश ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। दीवा ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। जब वो रक्षित के साथ रिलेशनशिप में थी तब उनके पासवर्ड एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ थे, लेकिन आर्यांश ऐसा करेगा उसने नहीं सोचा था। वो आर्यांश का मोबाइल अनलॉक करके उसमें मूवी सर्च करने लगी, तो वहीं आर्यांश उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका फोन टच करता था, लेकिन अब दीवा उसे यूज कर रही थी, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। शायद उसे दीवा पर भरोसा था। क्या वो दीवा को इस कदर चाहने लगा था कि उन दोनों के बीच कोई पर्दा रहा ही नहीं था? मूवी सर्च करते हुए दीवा की नजर एक रोमांटिक मूवी पर गई। उसने आर्यांश की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इसके साथ तो मैं कोई रोमांटिक मूवी बिल्कुल नहीं देखने वाली, कहीं ऐसा न हो कि ये वहीं पर शुरू हो जाए। वैसे भी इसे किसी चीज का डर नहीं लगता। दीवा ने एक एक्शन मूवी सिलेक्ट की और आर्यांश को उसका फोन लौटा दिया था। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में साथ जा रहे थे। रास्ते में लाइट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। आर्यांश ने रास्ते में गाड़ी चलाते हुए पूछा, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे स्ट्रीट फूड खाना है, दीवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो आर्यांश उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। उसकी नजर में स्ट्रीट फूड्स अनहाइजीनिक होते थे। आर्यांश ने गहरी सांस ली और कहा, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली आर्यांश ने उसे स्ट्रीट फूड खिलाने से मना कर दिया था। दीवा ने मुंह बनाया और कहा, ठीक है फिर मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छी बात है, मैं गाड़ी यू टर्न ले रहा हूं, घर पर जाकर बैठो और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसके फिर से धमकी देने पर दीवा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वो बोली, ठीक है जहां लेकर चलना चाहते हो चलो, जब तुम्हें अपनी मनमानी करनी होती है तो मुझे पूछते ही क्यों हो? आर्यांश उसकी बात पर बस मुस्कुरा कर रह गया। वो दीवा को मॉल लेकर गया, जहां मूवी देखने से पहले वो दोनों फूड कोर्ट में गए। नाश्ते के बाद जब वो दोनों मूवी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तब आर्यांश दीवा से आगे चल रहा था और दीवा उसके पीछे आ रही थी। आर्यांश अचानक चलते हुए रुक गया था। तो वहीं दीवा खोई हुई थी, तो वो आर्यांश की पीठ से जा टकराई। उसने अपना सिर रगड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, आहाहा, ऐसे लग रहा है जैसे तुमने मेरा सिर फोड़ दिया। हाँ तो किसने कहा था कि चलते वक्त किसी और चीजों के बारे में सोचने को, जो हुआ अच्छा हुआ, आर्यांश ने टॉन्टिंग वे में कहा। दीवा ने उसे देखकर मुंह बिगाड़ा और उसके साथ चलने लगी। अचानक आर्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया तो दीवा बोली, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें सब जानते हैं, हम पब्लिक प्लेस पर साथ नहीं दिख सकते हैं। क्यों, क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा है, हम तो इससे भी ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे किसी चीज की शर्म नहीं है, रही बात लोगों की तो देखते हैं कितने लोग बातें बनाते हैं, चलो मैं तुम्हें अभी सबके सामने किस करता हूँ, आर्यांश ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। दीवा जानती थी कि आर्यांश अगर कुछ करने का चैलेंज कर रहा है तो वो वैसा जरूर करेगा। वैसे भी आर्यांश और उसे साथ देखकर कुछ लोगों की नजरें उनकी तरफ घूम गई थी। अगर पब्लिक प्लेस में आर्यांश उसके साथ कुछ भी हरकत करता तो वायरल होने पर यह बात प्रार्थना और नवीन को जरूर पता चलती और वो मुसीबत में आ जाती।